शांति। एक बार एक युवक योगी, एक युवक सन्यासी, एक युवक तपस्वी अपनी यात्रा करते करते इतना थक जाता है कि किसी गांव के पनघट पर, पनघट अर्थात जहां कुआ होता है, वहां पर सो जाता है। इतना थक चुका होता है कि वहां का एक पत्थर लेता है और उसको तकिया बनाकर सो जाता है। उस पनघट पर पनिहारिणी गांव की स्त्रियां पानी भरने आती है। उस सन्यासी को इस तरह सोया हुआ देखकर एक पनिहारिन कहती है, एक स्त्री कहती है, देखो सन्यासी हो गया परंतु तकिए का मोह अभी तक गया नहीं है। वो योगी ये बात सुन लेता है और अपनी तकिया निकालकर फेंक देता है पत्थर। दूसरी स्त्री कहती है, संन्यास तो कर लिया पर अभी तक क्रोध नहीं गया। तीसरी स्त्री कहती है कि हम पनिहारिन तो यहां आएंगी और जाएंगी, हम कितना भी कुछ कहे तुम अपनी स्थिति क्यों बदलते हो। और चौथी स्त्री कुछ ऐसी एक अद्भुत बात उससे कह देती है जो उसने शायद ही कभी सुनी थी। वो चौथी स्त्री कहती है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही और किसी के सुनने से तुम क्यों बदलते हो। चाहे कुछ भी होता रहे तुम हरि का नाम लेते रहो, चाहे कुछ कहे कुछ या नहीं कहे। एक भगवान को छोड़कर इस संसार की आत्माओं को राजी करना बड़ा मुश्किल है। दिखाया है शंकर और पार्वती जा रहे हैं बैल को लेकर, लोग कहते हैं कितने मूर्ख हैं, ऐसा मूर्ख दाम्पत्य कभी देखा नहीं, बैल होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। शंकर जी को लगता है बात तो सही है, पार्वती से कहते हैं तुम बैठ जाओ बैल पर, आगे जाते हैं। लोग कहते हैं कैसी स्त्री है, अपने पति को पैदल चला रही है और खुद आराम से बैठी है। पार्वती उतर जाती है, वो बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा भी पति होता है, इतनी धूप पत्नी पैदल चल रही है और खुद आराम से बैठे हो, यही सीखा है धर्मों से शास्त्रों से। वो सोचते हैं अब क्या करें, तो दोनों बैठ जाते हैं और दोनों बैठकर जाते हैं। लोग कहते हैं कितने निर्दयी प्राणी हैं, ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो मूक बैल है कितनी यातना पहुंचा रहे हैं उसको, ऐसे भी निर्दय नहीं होना चाहिए लोगों ने। वो दोनों उतरते हैं, सामने से शंकर जी उसके बैल के दो पैर पकड़ते हैं और पार्वती दो पैर पकड़ के बैल को पकड़ के ले जाते हैं। लोग कहते ऐसे मूर्ख लोग आज तक हमने देखे नहीं, बैल होते हुए भी पकड़ के ले जा रहे हैं। चाहे तुम कुछ भी करो लोग कहेंगे ही, ऊपर देख के चलो तो लोग कहते हैं इनका तो जमीन को ये लोग देखते ही नहीं है, नीचे देखो तो कहते हैं कभी ऊपर भी देखा करो, ऊपर भी दुनिया भी तो देखो, यहां वहां देखो तो कहते हैं इनकी आंखों का ठिकाना नहीं है, और आंखें ही फोड़ दो तो कहते हैं कर्मों का भोग, जो किया वो पाया। चाहे कुछ भी करो दुनिया वाले कुछ ना कुछ कहेंगे ही। चाहे धारणाओं को धारण करो और उस पर चलो या नहीं चलो, कहने वाले कहेंगे ही। परंतु यदि हम बदलते रहे, यदि हम अपनी धारणाओं में और हम अपनी मर्यादाओं में कमजोर हो जाए, क्योंकि किसी और ने कहा, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया को कहना ही है, परंतु हमें अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ना है। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण जीवन की कुछ धारणाओं के ऊपर, और ये धारणाएं और ये मर्यादाएं और ये श्रीमती वह किला है, अगर इस किले के अंदर है तो सुरक्षित, किले के बाहर गए तो खत्म समाप्त। जो बातें हम कहने जा रहे हैं हो सकता है वो सुनकर किसी का हृदय विदीर्ण हो, क्योंकि बातें बहुत मीठी नहीं है, कड़वे प्रवचन सुना है ना, जैन मुनि है एक, कड़वे प्रवचन देते हैं, तरुण सागर जी। जब तक जीवन को धारणाओं में और मर्यादाओं में न बांधा जाए तब तक पॉसिबिलिटी संभावना रहती है विकारों के अंश जो मन में है उनके अंकुरित होने की, पल्लवित होने की, वृक्ष बनने की, और हमको घसीटते हुए उसी नरक और उसी गर्त में पहुंचाने की जहां हम पहले गिरे हुए थे। इसलिए इस भट्टी में सभी को चेक करना है उन सारी धारणाओं को, क्या मैं ये धारणा कर रहा हूं। छांटना है तीन चीजों को, श्रीमत क्या, मनमत क्या और परमत क्या। जो मनमत है उसको हटाना है, जो परमत है उसको हटाना है, और जो श्रीमत है उसको सामने रखना है और चेक करना है। संडे की मुरली, अमृत वेले से रात तक चेक करो, देखना क्या है, सुनना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, चलना कैसे है। एक है साधारण कर्म, एक है व्यर्थ कर्म, एक है विकर्म और एक है सुकर्म। तुम्हें विकर्मा चित्त बनना है, तुम्हें विकर्म सन्यासी बनना है, और विकर्म की परिभाषा बाबा ने दी है, विकर्म अर्थात हर वो कर्म जो विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो किया जाए, यह विकर्म की परिभाषा है। जब तुम देह देखते हो साकार महावाक्य बाबा के, तब तब तुम पाप करते हो। कितने कड़े वाक्य है, जब तुम देह देखते हो दूसरे महावाक्य, तब तब ज्ञान का नशा उड़ जाता है। क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं, विकर्म तो नहीं हो रहे, पाप कर्म तो नहीं हो रहे, तमोगुनी कर्म तो नहीं हो रहे, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद एक का 100 गुना है, अज्ञान में एक का 1 गुना। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों को विनाश करने के लिए लगता है। अज्ञान में थे तो माफ किया जा सकता है, परंतु ज्ञानी अगर है और उसके बाद में भी विकार की कशिश है, उसके बाद में भी संस्कार घसीटते हुए ले जाते हैं, क्षणिक आवेग है और वासनाओं का जाल मकड़ी के जाल की तरह हमें फंसाए हुए है, तो क्या उसे सुकर्म कहा जाएगा? धारणाओं को रिवाइज करना है, धारणाओं को चेक करना है, और उसके लिए धारणाएं क्या है, उसके लिए श्रीमत क्या है, व्हाट इज श्रीमत, ये पहले पता चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। अगर पुलिस पकड़ ले तो आप ये कहोगे मुझे पता नहीं था राइट से चलना है या लेफ्ट से चलना है, प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे पता ही नहीं था, छोड़ देते क्या? नहीं, कोई ये नहीं कह सकता बाद में कि मुझे पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, बताया था तुमने सुना नहीं, बताया था तुमने पढ़ा नहीं, बताया था एडमिशन तुमने लेट ली है विश्वविद्यालय में। तो पहले धारणाओं की बातें करेंगे और फिर कुछ कड़ी मर्यादाओं की। सबसे पहली धारणा, अमृत वेला उठना, परमात्म प्रेम वह अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेला उठाता है। किसी मुरली में स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वो अलार्म, वो वॉच, वो घड़ी धोखा दे सकती है, परंतु जिसने यहां पर सेट करके रखा है ईश्वरीय प्रेम का अलार्म, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसका संबंध फिर किसी शारीरिक बीमारी से भी नहीं है और कितने बजे सो रहे उससे भी नहीं है। एक भगत था, रोज सुबह उठता था 5 बजे और भक्ति करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि 6 बजे तक सोया रहा और जैसे ही उठा और देखा कि 6 बजे है और रोने लगा और आलाप करने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु ऐसा क्या कर दिया तूने, मैं क्यों इतना देर तक सोया, मुझे तेरी भक्ति करनी थी। सारे दिन भर पश्चाताप करता है, रोता है, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है, आज ये कैसा अनर्थ हो गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे आवाज आती है और उसको वो आवाज कहती है उठो। वो कहता है कौन है, क्या भगवान स्वयं आ गए हैं? वो कहता है नहीं, मैं माया हूं। वो कहता है तुम यहां कैसे आ गई? वो कहता है, वो कहती है कल तुम इतना रोए और भगवान ने यदि सुन लिया तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी कंप्लेंट हो जाएगी, इसके लिए मैं खुद तुम्हें आज उठाने आ गई। ये काल्पनिक कहानी है, परंतु भाव देखो कैसा है। एक भक्त आत्मा भी कितनी पंक्चुअल, कितनी रेगुलर। बाबा ने वैष्णवों को याद किया संडे की मुरली में, पक्के होते हैं वो, पक्के भक्त होते हैं, दुनिया क्या कहेगी ये नहीं सोचते। सबसे मुख्य धारणा है अमृत वेला। पिछले एक मास में ऐसे कितने हैं वो हाथ खड़े करो जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। ये धर्म सभा है, धर्मराज की सभा है, इंद्र सभा है, ये सोचकर ही हाथ खड़े करना। एक दिन भी अगर मिस नहीं किया है वो कम है। पिछले 15 दिन में जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया पिछले 5 दिनों में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। जो आज सुबह ही अमृत वेला जिन्होंने मिस किया वो हाथ खड़े करो। आज भट्टी का दिन था, पता था ना? कितना भी क्लासेस सुन लो और कितने भी मुरलियां सुन लो और कितनी भी डायरियां भर लो, जब तक अमृत वेला रेगुलर नहीं हो जाता तब तक इस ब्राह्मण जीवन में कोई मजा नहीं है। आत्मा जब तक देह से अलग होने का अभ्यास नहीं करती, वो अमृत पान नहीं करती अतीन्द्रिय सुख का, तो सारे दिन भर और जगहों से सुख लेना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी सुख की। दे दो सुख, दे दो शांति, दे दो। अगर इस भट्टी से केवल एक ही संकल्प करके जाए तो ये भट्टी सफल होगी, और वो ये कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। ये परमात्मा की पहली श्रीमत है, इसी को ही अगर पालन नहीं कर रहे और सब कुछ कर रहे हैं तो क्या प्राप्ति होगी? संसार के भगत सुबह सुबह उठ जाते हैं और हम सोए हैं। भगवान आकर खड़ा है, आशुतोष आकर खड़ा है अपने वरदान देने के लिए और हम सोए पड़े हैं। ये तपस्या का समय है, अपने जीवन को तपाना है और अपने अंदर सोया हुआ जो योगी है, जो तपस्वी है, उसे जागृत करना है। हर एक के अंदर एक तपस्वी बैठा है, सोया है, जागो। उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के निवासियों उठो, हे मगध निवासियों, बाप मगध देश में आया है, हे मगधो उठो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाए तब तक सोना नहीं है। 3 प्रकार की नींद है, एक नींद स्थूल, दूसरी नींद अज्ञान की जिसमें संसार सोया है, और तीसरी नींद जिसमें ब्राह्मण सोए हैं। वो कौन सी? एक स्थूल, एक अज्ञान नींद, और तीसरी जिसमें ब्राह्मण सोए पड़े हैं, विस्मृति की नींद। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, सब कुछ है, परंतु विस्मृत हो चुका है, इमर्ज नहीं है, मर्ज हो गया है, अवेयरनेस नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, वो चौकस चौकन्नापन वो खत्म हो गया है। धारणाओं के प्रति संसार में दौड़ते दौड़ते पता नहीं कहां खो रहे हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है एक किसान के बारे में। वो बहुत गरीब किसान था और उसके यहां एक बार एक मेहमान आता है और वो मेहमान उससे कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, उस देश में, उस साइबेरिया में जाओ, वहां पर जमीन बहुत सस्ती है। वो किसान रात भर सोचता है, बात तो बहुत अच्छी है, मुझे जाना चाहिए। सुबह सब कुछ बेचकर उस जमीन पर पहुंचता है साइबेरिया की भूमि में और वहां पर लोगों से पूछता है कि यहां जमीन का क्या भाव है। वो कहते हैं, भाव जितनी जमीन तुम चलोगे वो जमीन तुम्हारी होगी, केवल शर्त है जहां से चलना चालू करोगे वहीं पर सूर्यास्त तक पहुंच जाना चाहिए। वो रात भर सो नहीं पाता, कितना चलूं और कितना नहीं, क्योंकि जितना चलूंगा उतनी जमीन मेरी होगी। सुबह सुबह सारा गांव एकत्र होता है और एक लकीर खींच दी जाती है और उसे कहा जाता है कि सूर्यास्त तक इसी लकीर तक वापस आ जाना, और वो चलना चालू करता है। चलता है, चलता है, चलता है, सोचता है, चल क्यों रहा हूं, अगर दौड़ू तो जमीन ज्यादा मिलेगी। दौड़ना चालू करता है, बीच में प्यास लगती है, सोचता है अगर रुका तो जमीन कम हो जाएगी, बाद में तो पीना ही है, पानी की बोतल फेंक देता है और चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, दौड़ता है। भूख लगती है, सोचता है खाना तो है, पर खाना खाने यदि रुका तो जमीन कम हो जाएगी, खाना फेंक देता है और दौड़ता है और भागता है और हाँफता है और दौड़ता है और हाँफता है और भागता है। दोपहर ही हो जाती है, सोचता है अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी तो है, परंतु सामने की जो जमीन है वो बहुत सुंदर है, सोचता है थोड़ा सा और दौड़ लेता हूं, और थोड़ा दौड़ता है और दौड़ता है, फिर रुकता है, सोचता है अब वापस जाना चाहिए, परंतु सामने की जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ उर्वर फर्टाइल नजर आ रही है, सोचता है थोड़ा सा और दौड़ लूं, और दौड़ता है थोड़ा, और फिर एक समय आता है चार बज जाता है, सोचता है अब तो वापस जाना ही चाहिए, और फिर वापस जाने लगता है और तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है क्योंकि सूर्य उधर नीचे नीचे जा रहा है, और तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है कि फिर दिखाई देते हैं गांव के लोग दूर खड़े हुए हैं, बस थोड़ा ही अंतर है, इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि बस थोड़े ही गज की दूरी पर आता है और धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, लालच, एक कारण है लालच, और लालच में मोह आसक्ति सब आ गया, बार बार वही आंसर नहीं बताना, लालच एक, दूसरा इच्छाएं, बहुत ज्यादा इच्छाएं, तीसरा, तीसरा, तीसरा सेटिस्फैक्शन नहीं है, और फिजिकल वीकनेस फिजिकल वीकनेस, और भी कोई कारण, और कोई इंटेलिजेंट कारण दिखाई दे रहा है, शर्त क्या थी, वापस जाना भी है, टाइम मैनेजमेंट, कहीं हम भी तो ऐसे भागे नहीं जा रहे, भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे, और भगवान आके कह रहा है कि वापस जाने का समय आ गया है, चलो मेरे साथ, और हम सामने की जमीन कैसी है, बहुत सुंदर है, अगर ऐसा घर बन जाए तो बहुत अच्छा, अगर ये वाली कार आ जाए तो बहुत अच्छा, जब साइकिल थी तो बहुत दुखी थे क्योंकि बाजू वाले के पास क्या थी, स्कूटर थी, देख देख कर जलन होती थी, दुख होता था, फिर एक दिन स्कूटर आ गई, परंतु दुख नहीं गया, स्कूटर तो आ गई, क्यों, क्योंकि पड़ोसी के पास अब कार है, फिर एक दिन कार आ गई, फिर भी दुख नहीं गया, क्यों, क्योंकि पड़ोसी के पास जो मॉडल है और हमारी जो कार है उसके सामने तो बैलगाड़ी नजर आ रही है, अब वो वाली चाहिए, और इसी तरह भाग रहा है मनुष्य, भाग रहा है, 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 ब्राह्मण बन गए फिर भी भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, संसार की वस्तुएं, संसार के वैभव, जबकि भगवान कह रहा है तुम्हें चाहिए क्या, क्यों भाग रहे हो, अब वापस जाने का समय है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित नष्ट हो जाएगा, मुरलियों में आता है, क्या हम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहली धारणा है अमृत वेला, अगर ये है तो ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ है, ये इस पर ब्राह्मण जीवन खड़ा है, सारा दिन उस अमृत वेले पर खड़ा है, अगर वही डगमग है, अगर उसी में नींद है, उसी में अगर उठ रहे परंतु साधारण है, उसमें अगर नींद है, सुस्ती है, कोई अनुभव नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है, अशरीरीपन का अनुभव नहीं हो रहा है, परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा डूब नहीं रही है और उसके प्यार से अश्रुधारा नहीं बह रही है, तो ब्राह्मण बन के हमने क्या किया, फिर तो हम भगत हो गए। नित्य दिन नए अनुभव हो और फिर दिन भर समस्याएं, दिन भर इसको पूछो उसको पूछो, जीवन में ये समस्याएं कैसे हल करें। सर्व समस्याओं का हल है अमृत वेला। योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरी शरण में आ, मेरे प्रति समर्पित हो जा, तो तेरा सब कुछ मैं करूंगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि तुम बाप की याद में मगन हो जाओ तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। एक छोटी सी बच्ची है, खिलौने से खेल रही है, जिसका खिलौना टूट जाता है, बहुत जोड़ती है, कोशिश करती है, नहीं जुड़ता। भगवान के पास जाती है और कहती है कि इस खिलौने को ठीक करो। भगवान कहता है कि हां मैं करूंगा, करता हूं। एक कविता है ये, और भगवान उसका खिलौना ठीक करने बैठता है तो वो लड़की कहती है इसको इधर जोड़ना, फिर कहती है अरे ये क्या कर रहे हो, उधर जोड़ो, फिर कहती है अरे ये क्या कर दिया, फिर वो क्या कर दिया। भगवान कहता है ले तेरा खिलौना, तू ही संभाल, हमने दी नहीं है समस्या उसको, प्रश्न दिए ही नहीं है, अर्पण किया ही नहीं है उसके चरणों में, इसके लिए इतने प्रश्न हैं, इसके लिए समस्या है, उलझने हैं, कंफ्यूजन है, हर चीज में कंफ्यूजन, करना कि नहीं करना, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर का हैमलेट जैसा हमेशा कंफ्यूजन में है, टू बी और नॉट टू बी, करूं या नहीं करूं, क्या करूं। अमृत वेला। दूसरी धारणा मुरली। उस दिन भी कहा था, मुरली अर्थात मुरली क्लास में गए, डायरी निकाली, मीठे बच्चे लिखा, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, डायरी बंद हो गई, और फिर मुरली सुनी, बीच बीच में थोड़ी सी नींद, और फिर जब मीठे मीठे सिकी लदे, फिर से डायरी खुली, धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट एक, पॉइंट दो वरदान, स्लोगन डायरी बंद, अब सीधा कल सुबह खुलेगी। क्या इसको ज्ञान में चलना कहते हैं? कोई कोई तो वही सेंटर पर ही डायरी छोड़ के जाती है माता है, टेबल के नीचे, सीधा दूसरे दिन आके खोलने के लिए। सेंटर पे जाना, मुरली सुनना और घर वापस जाना, डायरी में नोट करना, ये है पुरानी चाल। शाम की क्लास में हम बहुत सुंदर टॉपिक, मुरली पर मंथन करने की अलग अलग विधियां देखेंगे, लगभग 30-40 मेथड्स। तो मुरली को पीना है, लिखना नहीं है, सुनना नहीं है, क्या करना है, पीना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरडितम कल्मशापहम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भुरिता जना। भागवत में गोपिया कहती है हे कृष्ण, तव कथामृतम, तेरी जो कथा है कैसी है, अमृत के समान है, तप्त जीवनम, हम तप रहे हैं, विकारों में जल रहे हैं, हमारी जो तपिश है, जो ताप है, उसको बुझाने वाली है। श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से श्रवण हो मंगल हो जाता है। कवि विरडितम, कवियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने जिसका गायन किया है, ऐसा उसका एक एक शब्द कैसा है, अमृत के समान। उसको अमृत समझकर ही धारण करना है, खो ना जाए कहीं डायरियों के पेजेस पन्नों में, यहां होना चाहिए। तो मुरली का चिंतन, मुरली का मनन, मुरली का अध्ययन, मुरली की चर्चा, ये तीन चार चीजें होनी चाहिए। तीसरा भोजन। कितनी माताएं यहां बैठी है जो रोज भोग लगाती है, और बाकी बाकी नहीं, भगवान को बेटा बनाया नहीं बनाया, तो बेटे को रोज भूखा और फिर समस्या आने के बाद आ जाओ त्राही 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 माम, और रोज उसे भूखा रखते हो। इस भट्टी से आज से या कल से इस बात को धारण करना है कि जो भी माता भोजन बनाती है वो बाबा को भोग जरूर लगाए, 24 घंटे में कम से कम एक बार लगाएंगी सभी। प्यार है, उसे भोजन नहीं चाहिए, भोजन का भूखा नहीं है, वो भावना का भूखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति, हे अर्जुन मुझे कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे और फल दे दे और भावना से दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पत्र पुष्प और फल, और मुझे 56 भोग नहीं चाहिए। भोजन बनाना चौका, हिंदी में शब्द है चौका, रसोई चौका में चार बातें चाहिए। भोजन कहां से आ रहा है, किस कमाई से आ रहा है, एक नंबर, दो नंबर, किसी को दुख देकर पीड़ा देकर यातना देकर वो भोजन कमाया जा रहा है तो शक्ति नहीं भरेगी उस भोजन से। एक दूसरा, भोजन बनाने वाले किस संकल्प से भोजन बना रहा है। तीसरा, भोजन खुद उसमें कोई दोष तो नहीं, तमोगुनी तो नहीं, रजोगुनी तो नहीं, सतोगुनी है, कैसा है। चौथा, खाने वाले की स्थिति कैसी है। अगर क्रोध में कोई भोजन खा रहा है तो वो भोजन भी नॉन वेजिट है। अगर आनंद मगन अवस्था में नहीं खा रहा है, अगर अहोभाव से और ग्रेटिट्यूड के भाव से और धन्यवाद देकर वो भोजन को नहीं खा रहा है और जल्दी जल्दी खा रहा है, वो भी विकर्म गिना जाएगा, स्वमान में नहीं खा रहा है भोजन। चौथा, कर्मयोग, कर्म करते समय बीच बीच में बाप की याद, कर्म करते समय अशरीरीपन का अभ्यास, कर्म करते समय स्वमान का अभ्यास, कर्म करते करते रूहानी ड्रिल, कर्म करते करते आत्मिक दृष्टि, बीच बीच में जितना हो सके। ऐसा ना हो जाए कि 9 बजे तक अवस्था बहुत अच्छी है, जैसे ऑफिस में गए, जैसे ड्यूटी में गए, सब कुछ खत्म और सीधा 5 बजे जागृति और फिर 5 बजे बाबा भी है ये ख्याल, कर्म में पूरा ही जैसे उसको भूल चुके हैं। ऐसी विस्मृति ना हो, छोटी छोटी ज्योत लव धड़कती रहे याद की, एकदम बुझ ना जाए। अगला, नुमा शाम का योग, ऐसे कितने हैं जो रेगुलर 6:30 बजे से या 7 बजे से 7 बजे, 7 से 7:30 तक रोज योग करते हैं। बाकी जो अमृत वेला अनुभव होता है वही अनुभव शाम को भी होना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी समय निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं वो थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, तब कहीं हो सकता है। 7 से 7:30 या 6:30 से 7 या 7 से 7:30 कोई भी टाइम, अगर ट्रैवल कर रहे, अगर उस समय ऑफिस में है तो भी उस टाइम को मौन का टाइम बना दिया जाए और आंतरिक याद अंदर ही अंदर करना है, नुमा शाम का योग। अगला, रात्रि के सोने की विधि, टीवी देखते देखते कौन सोता है, सीरियल देखते देखते, टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते, सोने के समय का अंतिम संकल्प ही उठने का पहला संकल्प होता है। किस अवस्था में सोया जा रहा है, 95 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने यहां तक कहा है, अगर सेवा का समाचार भी सुनाना हो तो कमरे से बाहर जाओ, सेवा का समाचार सुनाओ और फिर अंदर आओ और फिर सो, याद करके सोना। एक, कुछ पढ़कर सोना, अव्यक्त मुरली के कम से कम 2-3 लाइन, पूरी अव्यक्त मुरली नहीं कह रहे हम, थोड़े से वाक्य, शक्तिशाली वाक्य, या तो कुछ क्लास सुनते सुनते या तो कमेंट्री सुनते सुनते सोना। और जो लेटने का समय है, बेड पर जब लेट गए, वो जो समय है सबसे ज्यादा रिसेप्टिव टाइम है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने का। ये है कॉन्शियस माइंड, ये है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन बीच में जैसे एक बैरियर है प्री कॉन्शियस। रात के सोने समय ये उठता है, जो संकल्प डालो वो सीधा अंदर जाएगा। सोते सोते कमेंट्री लगा के सोते कई लोग, पर कईयों को नींद नहीं आती उसकी वजह से, ऐसे भी है। परंतु योग करते करते सोना, जैसे देह यहां छूट गया है, मैं आत्मा इस देह के, देह रूपी गाड़ी को गैरेज में डालकर मैं आत्मा चली परमधाम। ये अभ्यास करते करते सोना। तो ये कुछ धारणाएं हैं। अभी आते हैं मर्यादाओं की ओर। सबसे पहली मर्यादा संपूर्ण पवित्रता। सबसे पहली मर्यादा संपूर्ण पवित्रता। ये देह विष है, सांप है। यदि संकल्प और नजर से भी इस देह को टच करते हो तो महा 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 पाप है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इस यज्ञ में जितने विघ्न आए, जितना कुछ सहन करना पड़ा दादियों को, बहनों को, भाइयों को, किस वजह से सहन करना पड़ा? पवित्रता के कारण। आधार स्तंभ ही पवित्रता है संपूर्ण यज्ञ का, उसे यदि हटा दिया जाए तो यह यज्ञ नहीं है। भगवान इस संसार में पतित से पावन बनाने के लिए, एक ही कर्तव्य करने के लिए आया है। और यदि उस पवित्रता की धारणा में, उस ब्रह्मचर्य की धारणा में, यदि वो ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, यदि बार बार देह खींच रहा है, तो ये पहली श्रीमत का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सभी भाई और सभी बहनें, इस बात को फिर से अंडरलाइन करना है और रोज अपने आप से और बाप से अमृत वेला प्रतिज्ञा करनी है। एक बार प्रतिज्ञा कर दी काम हो गया, ऐसा नहीं है। पवित्रता की प्रतिज्ञा हर दिन करनी है। अमृत वेला किससे? एक तो स्वयं से और दूसरा बाबा से। साकार मूल्य है बाबा की। बच्चे बाप से कहते हैं बाबा क्या करें, मां बाप कह रहे हैं शादी करो, बाप कहते हैं बच्चे सर भी कट जाए तो चलेगा। साकार महावाक्य है बाबा के, तुम उच्च पद पाओगे। बाप जिस एक कर्तव्य के लिए इस समय आया है वो ये एक ही कर्तव्य है। जो ये सोचते हैं कि हम उस जीवन में जाकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, भ्रम है। अकेले ही नहीं कर सकते तो दो कैसे कर सकते? एकांगी पगडंडी है, अकेले को चलना है। एकला चलो रे, वॉक अलोन। बाइबल में लिखा है द पाथ इज नैरो, किसी और को लेके नहीं चल सकते, इसमें अकेला चल सकता है। जा में दो ना समाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए, एक को चलना है बस, ओनली वन। किसी को साथ में लेने का संकल्प ही धोखा है। एक शिकारी भटक गया जंगल में शिकार करते करते, तीन दिन भूखा प्यासा, कोई नहीं दिख रहा है, ना तो कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना तो कोई पंछी परिंदा, कुछ नहीं। और अचानक पाता है कि दूर कहीं एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और भाग कर जाता है, पाता है कि वो भी एक शिकारी है जो भटक गया है। अब वो दोनों मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं, पर थोड़े देर के बाद फिर दुखी हो जाते, क्योंकि अब दोनों ही भटके हुए हैं। पहले एक भटका था, अब दोनों मिले और दोनों भटके। एक भिखारी है, भिखार भीख मांग रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई साथी नहीं है, दूसरा भिखारी मिला, दोनों साथ साथ भीख मांग रहे हैं। समाज ने इसे विवाह कहा है। आत्मा खुद ही समृद्ध नहीं है, तो कोई दूसरी आत्मा उसे कैसे तृप्त कर सकती। आत्मा अनंत है, अनंत आत्मा को अनंत ही तृप्त कर सकता है, कोई देह तृप्त नहीं कर सकती। देह देह कभी मिलके तृप्ति नहीं पा सकती, क्योंकि मिलन हो ही नहीं सकता। अणु है, जड़ है, जड़ जड़ से कभी नहीं मिल सकता। भ्रम मात्र है सुख का, एक लाचा लोरे। पहली धारणा संपूर्ण पवित्रता, पहली मर्यादा संपूर्ण पवित्रता, दूसरी मर्यादा भाइयों के लिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है किसी देवी के, और उस देवी के प्रति उसके मन में कुभाव जागृत हो रहे हैं, और वहां के लोगों को वो पता चल जाए तो क्या होगा वो बताओ। कोई व्यक्ति देवी के मंदिर में प्रवेश करता है और उसके मन में विकारी भावनाएं जागृत हो गई उस देवी के प्रति, और वहां के लोगों को वो पता चल जाए तो क्या करेंगे उसके साथ, क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे वहां से, और उसे खुद भी आत्मग्लानी होगी। जिस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे, जिस सेवा केंद्र पर हम प्रवेश कर रहे, उसमें रहने वाली हमारी जो बहनें हैं वो कौन है? ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिन्होंने अपना जीवन और सर्वस्व अर्पण कर दिया है। क्या वो साधारण आत्मा है? क्या सोचते हो? चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, कमाई कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, अपने यौवन को यज्ञ की वेदी पर समर्पित जिन्होंने किया है, उनके प्रति हमारी क्या दृष्टि है? ऐसी जो कुमारी है अनटच्ड, क्या हम सोच रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं ये थोड़ी कम पढ़ी लिखी है? क्या ये तो नहीं सोच रहे कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है? क्या ये सोच रहे हैं इन्हें संसार का ज्ञान नहीं है? चुना किसने है उन्हें? किसने चुन कर रखा है अपने इस यज्ञ में उनको, और उनके प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं? क्या उनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र नहीं कर चल रहा है मन में? एक तो है विकार की भावना, दूसरा है विरोध, गुटबाजी, षड्यंत्र करना, पर चिंतन करना, निंदा करना, ग्लानी करना, गॉसिप करना। क्या सोच रहे हैं उनके बारे में हम? कहीं भूल तो नहीं रहे? कौन है ये? उनको देखो और संसार की स्त्रियों को देखो क्या कर रही है। पग पग पर सहन करना है वहां पर। इसलिए सभी भाई स्वयं की भावनाओं को चेक करें, चाहे छोटी कन्या हो या कोई कुमारी या समर्पित बहन। हमारी दृष्टि बहुत ऊंची हो सकता है कभी वो निर्णय गलत भी ले, परंतु बाबा के ही महावाक्य है, उन्हें निमित्त बाप ने बनाया, बाप जिम्मेवार है। और दूसरी तरफ सभी माताएं ये तो नहीं समझती ये हमको क्या सिखाएगी, कुमारियां ये तो नहीं समझती कि हम ज्यादा पढ़ी लिखी है, हम कमाते हैं, इनको क्या पता। अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को तिलांजलि देकर स्वयं के जीवन को अर्पण कर देना, ऐसी समर्पिताएं और अर्पिताएं और निवेदिताएं क्या साधारण आत्माएं हैं? भगवान ने स्वयं ज्ञान का कलश सिर पर रखा है उनके। कल भी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, एक दिन आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा पैगाम फैलाएगी। अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। ये वही है संपूर्ण पवित्रता, मर्यादा है। सेंटर में आने की मर्यादा, सेंटर पर आकर कौन सी बातों की चर्चा कर रहे हैं, बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं, पैसों की चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा छोड़कर पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, ये मर्यादाएं नहीं है। फैमिलियरिटी, बाबा ने कहा है डिटैचमेंट हो रिलेशंस में, इतना संबंध ना बढ़ा दो कि उसमें लौकिकता आ जाए, उसमें क्या हो डिटैचमेंट, एक अलौकिक दूरी हो संबंधों में, क्योंकि जहां अटैचमेंट आएगी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घृणा जन्म लेगी वहां पर, फिर दोष दिखाई देंगे, अवगुण दिखाई देंगे उनके, इसके लिए डिटैच्ड संबंधों में भी, तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट। मधुबन जाते हैं वहां की कुछ मर्यादा है, यहां से मधुबन जाते हैं और मधुबन की ग्लानी करते हैं, यहां ये अच्छा नहीं है, वहां वो अच्छा नहीं है, ये भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, यहां से गए थे किस लिए, भगवान से मिलन मनाने के लिए, वो छोड़कर परचिंतन और परदर्शन करना, क्या ये मर्यादा है? स्वयं को चेक करना है, स्वयं अपना प्रोग्राम बनाना, अपना ही अरेंज करना बिना बहनों को बताए, बॉसिंग नेचर, दबाना किसी को, क्या यह मर्यादा है? स्वयं को चेक करना है कि मेरी भाव और मेरे भावनाओं में कहीं श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ये लोग बहुत चालाक है सभी, किस तरह के भाव उमड़ते हैं मन में यज्ञ के प्रति, यज्ञ की आत्माओं के प्रति, क्या हम सोच रहे हैं उनके प्रति, सब कुछ चेक करना है और अपनी इन मर्यादाओं को बार बार रिवाइज करना है, याद दिलाना है स्वयं को क्यों मैं यहां आया था। मधुबन में एक भाई है, उन्होंने अपने लिख के रखा है आईने में, बहुत अच्छी बात, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, हम यहां किस लिए आए थे, परचिंतन परदर्शन निंदा ग्लानी करने आए थे या अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने आए थे, क्या करने आए थे, स्वयं से बात करनी है, स्वयं से पूछना है, स्वयं को बांधना है इन धारणाओं में और इन मर्यादाओं में, ये लक्ष्मण रेखा है, पार की तो रावण खड़ा है, उठाकर ले जाएगा शोक वाटिका, इसके लिए सारी मर्यादा है, पवित्रता से लेकर तो संबंध से लेकर तो सेंटर में आने से लेकर तो सेंटर के वातावरण को दूषित करना अपने विकारी, अपने व्यर्थ या विकल्पों से, ये भी मर्यादा नहीं है। बैठकर किसी का चिंतन करना, क्या ये मर्यादा है? तो सभी इसका गहराई से चिंतन करें। इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं, अगला क्लास 4:30 बजे, सभी 4:30 बजे तक यहां आ जाएं। ओम शांति।